वचन।
नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, इससे पहले कि हम आज के अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब परमेश्वर से सहायता मांगे और आज के वचन के लिए आशीष मांगे। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबको दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारे विनती है प्रेम पिता परमेश्वर कि आप हमें से प्रत्येक की आत्मिक आँखों को, हमारे कानों को, हमारे हृदय और विचारों को खोल दें, हमें एकाग्रतापन दें ताकि जब हम आपके वचन को सुनते हैं हमारे कानों से होकर हमारे हृदयों तक पहुंचने पाए और होने दे कि ये वचन हमारे जीवन को बदलने पाए। और हम प्रार्थना करते हैं उन प्रिय भाई बहनों के लिए भी जो दुखी हैं, जो निराश हैं, चिंता और परेशानियों में हैं, अपने किसी न किसी पारिवारिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, आर्थिक रूप से या बीमारी के रूप से, प्रभु आप उनकी भी सहायता करें और होने दे कि आज के इस वचन के द्वारा वे आपके निकटता में आ सकें। जिस प्रकार आपने लाजर से प्रेम किया, मार्था और मरियम से प्रेम किया, आज हमसे भी करें और हमारे इन भाई बहनों को भी आशीष दें। धन्यवाद प्रभु आपकी सहायता के लिए। इस समय हम में से हर एक को आपके हाथ में सौंप देते हैं। आप हम सब की सहायता करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय का अध्ययन देख रहे थे कि यीशु यरूशलेम से पूर्व लाजर के घर में भोजन कर रहा था, और इधर यरूशलेम में लाजर को फिर जीवित करने के कारण फरीसी अत्यधिक खिन्न थे। महासभा में महायाजक कैफा ने घोषणा कर दी थी कि यीशु को मारना आवश्यक है। यीशु तो पहले से ही जानता था, अतः वह फसह के पर्व में खुल्लम खुल्ला प्रवेश करता है और जन साधारण लाजर के पुनर्जीवन के चमत्कार के कारण यीशु के लिए होशाना का नारा लगा रही है, परंतु यही वह भीड़ है कल चिल्लाएगी कि उसे क्रूस दो। तो आइए आज हम आगे बढ़ते हैं और देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 25 पद में लिखा है, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यीशु उनसे बात करने बाहर आया। जिसने भी यीशु को खोजा उसे यीशु ने कभी अनदेखा नहीं किया। यूनानी यीशु को देखना चाहते थे क्योंकि उन्होंने लाजर के फिर से जीवित हो जाने की चर्चा सुनी थी। यीशु उन यूनानियों का ध्यान अपने क्रूस की ओर ले जाता है। आपको स्मरण होगा, यीशु ने अपनी माता मरियम से कहा था कि उसका समय नहीं आया है, जिसे हम यूहन्ना 2 अध्याय के 4 पद में पाते हैं। परंतु अब उसका समय आ गया था। कैसा समय? उसके उस कार्य का समय जिसके लिए वह अनादि अनंत समय से निकलकर पृथ्वी पर आया था, क्रूसीकरण का समय। यीशु के लिए क्रूस का विचार रोमियों से सर्वथा भिन्न था। रोमी क्रूस को अपयश, अपमान और लज्जा की बात मानते थे। यीशु क्रूस की मृत्यु के लिए भी आज्ञाकारी रहा। क्यों? हम गलतियों के पत्र 3 अध्याय उसके 13 पद में पौलुस के द्वारा से पाते हैं जो इसे स्पष्ट करता है, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। मेरे मित्रों, तीसरे दिन वह मृतकों में से जी उठा और महिमा और आदर से शोभायमान किया गया, क्योंकि उसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। मेरे प्रियों, उस क्रूस से परमेश्वर की महिमा छलकती थी, इसीलिए वह कहने योग्य था कि उसके महिमान्वन का समय आ गया था। मेरे मित्रों, वह आपके और मेरे लिए अपनी जान देते समय महिमा से परिपूर्ण था। वह जब कब्र से निकला तब वह महिमा से परिपूर्ण था। दया, क्षमा और पाप मोचन क्रूस में पाए जाते हैं। प्रभु यीशु ने गेहूं के दाने का उदाहरण देकर एक महान सिद्धांत समझाया है। गेहूं का दाना मरकर फसल देता है। अनेक जन सोचते हैं कि सुसमाचार पढ़कर और यीशु की जीवनी का अध्ययन करके वे यीशु को समझ गए हैं, परंतु यह यीशु ऐतिहासिक व्यक्ति है। यीशु को देखना है तो उसकी मृत्यु और उसके पुनरुत्थान को समझना होगा। मेरे मित्रों, उसकी मृत्यु मोचक थी। उसने अपनी जान दी कि हम जीवन पाएं। यीशु आप पर तब ही प्रकट होगा जब आप यह जान लेंगे कि वह आपके लिए क्रूस पर मरा। वह संसार के पापों के लिए मर गया। यूनानियों से वह यह कह रहा था कि उसे शारीरिक अवस्था में देखना ही पर्याप्त नहीं। देखने वाली बात तो यह थी कि वह मरेगा, गेहूं का दाना मरेगा और जीवन उत्पन्न करेगा। वह मरकर फिर जी उठेगा, यही महत्वपूर्ण बात है। मेरे मित्रों, वह यूनानियों को समझा रहा था कि जीवन दो प्रकार के होते हैं। एक वह जीवन जो सांसारिक भोग विलास में संतोष पाता है, अर्थात प्राकृतिक जीवन जो एक दिन समाप्त हो जाता है। मेरे मित्रों, मैं किसी धनवान व्यक्ति के अंतिम संस्कार में उपस्थित था और वहां सब धनवान जन इकट्ठे थे। वहां के पुरोहित ने सुसमाचार में से संदेश देते हुए कहा कि पाप मनुष्य को नरक में ले जाता है। उपस्थित गण कुछ परेशान से होने लगे थे। जब उसने उन्हें मृतक के अंतिम दर्शन हेतु आमंत्रित किया तब कहा, इस मनुष्य का जीवन समाप्त हो गया है। उसने उसे पूरा जिया। उसने परमेश्वर को तुच्छ जाना और प्रभु यीशु से मुंह मोड़ लिया था। तब उसने उपस्थित गण की ओर देखकर कहा, इसी प्रकार आप में से हर एक का अंत होगा यदि आप मसीह यीशु को स्वीकार नहीं करेंगे। मेरे मित्रों, यह एक सीधी सी बात है। हमें भी सीधी और स्पष्ट बात करना चाहिए। हमारा प्रभु यही कहता है, जो अपने और अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है। उसके कहने का अर्थ यह था कि यदि आप यहाँ सुख विलास में जीवन जिएंगे तो जीवन खो देंगे। इसके उपरांत प्रभु यीशु ने विषमता दर्शाई, जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। अनंत जीवन कहां से प्राप्त होता है? उससे जो मर गया और फिर जी उठा, वह प्रभु यीशु मसीह है। यही आपके जीवन की रक्षा का मार्ग है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 26 पद में पढ़ते हैं, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। वह कह रहा है मेरे पीछे हो ले, परंतु वह तो क्रूस की ओर जा रहा है। यह उसकी प्रतिज्ञा है कि वह जहां होगा वहां उसके सेवक भी उसके साथ होंगे और पिता परमेश्वर उसका आदर करेगा। हम आगे देखते हैं, यीशु का समय आ गया। हम यूहन्ना 12 अध्याय उसके 27 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, अब मेरा जीव व्याकुल हो रहा है, इसलिए अब मैं क्या कहूं, हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा, परंतु मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं। ध्यान दीजिए, क्रूस का जो कष्ट यीशु ने उठाया उसे आप और मैं समझ नहीं सकते हैं। उसका कष्ट मात्र वही नहीं था जो मनुष्यों के हाथों उसने सहा, उस पर आपके और मेरे पाप डाल दिए गए थे। हम यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय उसके 3 पद में पढ़ते हैं, वह दुखी पुरुष था, उसने संसार के पाप उठाए। 53 उसके 4 पद में, उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। और आगे वह 53 अध्याय उसके 10 में कहता है, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया जब वह अपना प्राण दोष बलि करे। मित्रों, यद्यपि वह पवित्र और शुद्ध था तथा पापों से अछूता था, तो भी हमारे लिए हमारे पापों के कारण उसे पापी बनाया गया। यह ऐसा कष्ट है जिसे आप और मैं समझ नहीं सकते हैं। एलिजाबेथ क्लेफेन ने बड़ी अच्छी कविता लिखी है, लिखा है, किसी मुक्त मनुष्य ने नहीं जाना कैसे गहरे पानी से वह गुजरा, या अंधेरी रात जिसमें वह निकला और पाया अपनी भेड़ को। उसका मन व्याकुल था, वह क्रूस के सामने त्रस्त हो गया था, परंतु इस संसार में उसके आगमन का उद्देश्य क्रूस और क्रूस की लज्जा उठाना ही था। परंतु मेरे मित्रों, इस क्रूस में महिमा भी थी। हमें इस पर अधिकाधिक विचार करना है और उसे बहुत धन्यवाद देना है। पौलुस गलतियों की कलीसिया को लिखता है 6 अध्याय उसके 14 पद में, ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात पर घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। क्या आप समझ रहे हैं कि यह पद कैसे हमारे पिछले 2 पदों से जुड़ रहा है? हमारा प्रभु सर्वोच्च बलिदान के लिए तैयार है, मानव जाति के लिए छुड़ौती, और वह अपने अनुयायियों को चुनौती दे रहा है। जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। आप किसी के जीवन को देखकर कह सकते हैं कि उसका अंत क्या होगा। अब कोई यह कहे कि हम तो विश्वास के द्वारा उद्धार पा चुके हैं, क्योंकि आप विश्वास पर कर्मों से अधिक बल देते हैं, अति उचित, मैं ऐसा ही करता हूं। यदि आपको उद्धार पाना है तो उस पर विश्वास करना आवश्यक ही है। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 31 पद में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मित्रों, आप उस पर वास्तव में विश्वास करेंगे तो वह आपके जीवन को बदल देगा। और यदि आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आया है तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि आप उसमें विश्वास नहीं ला पाए हैं। यह मुख्य विषय हमारे साथ प्रभु की उपस्थिति का नहीं परंतु हमारे वहां होने का है जहां प्रभु है। किसी ने मुझसे कहा, मैं स्वतंत्र कलीसिया का सदस्य अवश्य हूं परंतु प्रभु मेरे साथ वहां आराधना करता है। मेरे मित्रों, प्रभु आपके पीछे नहीं चलता है, आपको प्रभु के पीछे चलना है। जहां वह है वहां आप भी हों। उद्धार उद्धार घृष्ट नहीं है, यह घड़ी प्रभु के लिए असहनीय थी। यदि संभव होता तो वह पाप के आतंक से परमेश्वर पिता से मुक्ति मांगता। यद्यपि वह जानता था कि इसी उद्देश्य के निमित्त वह पृथ्वी पर आया था, उसने कहा, हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 28 पद में पढ़ते हैं, हे पिता, अपने नाम की महिमा कर, तब यह आकाशवाणी हुई कि मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। ध्यान दीजिए, यीशु की सर्वोच्च मनोकामना परमेश्वर की महिमा थी। यह हमारे लिए बहुत अच्छा सबक और सीख है। हम परमेश्वर से शिकायत करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं कि वह हमें कष्ट क्यों देता है। हमें प्रभु के साथ कहना चाहिए, हे पिता, इस कष्ट और दुख के द्वारा अपनी महिमा कर। मेरे मित्रों, स्वर्ग शांत न रह पाया और पिता ने कहा, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। आप ध्यान दें कि परमेश्वर ने 3 बार स्वर्ग से उसके साथ बातें की थी, उसकी सेवा के आरंभ में, रूपांतरण के पर्वत पर और यहां, और तीनों आकाशवाणियां उसकी मृत्यु के संबंध में चर्चा के समय हुई हैं। हम यूहन्ना 12:29-30 पद में पढ़ते हैं, तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा, और उन्हें कहा कोई स्वर्गदूत उससे बोला। इस पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। किसी की बात सही थी और किसी की भी नहीं, यह परमेश्वर की वाणी थी। उस युग में स्वर्गदूत परमेश्वर के संदेशवाहक थे, अतः उनका सोचना एक प्रकार से सही था कि वह वाणी स्वर्गदूत की थी, परंतु वे नहीं जानते थे कि स्वर्गदूत अर्थात देह धारण रहित यीशु तो देह धारण में उनके सामने था। कुछ ने कहा बादल गरजा। आज भी अनेक जन यही कहते हैं क्योंकि वे यीशु के चमत्कारों में विश्वास नहीं करते हैं। परमेश्वर का वचन स्पष्ट दर्शाता है कि यीशु का जन्म अलौकिक था, उसका जीवन चमत्कारों से परिपूर्ण था, उसकी मृत्यु गेहूं के दाने के समान थी कि वह पुनः जीवित हो उठे अर्थात जी उठा। मेरे मित्रों, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तब पवित्र आत्मा हमारी सहायता के लिए होना आवश्यक है, अन्यथा हम अलौकिक को लौकिक परिदृश्य से देखेंगे और हम उसे नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हम प्राकृतिक मनुष्य हैं। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 31-33 पद में पढ़ते हैं, अब इस जगत का न्याय होता है, अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। मित्रों, ध्यान दीजिए, क्रूस पर यीशु की मृत्यु इस संसार का न्याय और इस संसार के सरदार का तख्ता पलट थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 7-11 पद के अनुसार यह पवित्र आत्मा की गवाही है। वह संसार के पापों का न्यायिक दंड भोगने आया था। यदि संसार इसे स्वीकार नहीं करेगा तो उस पर दंड की आज्ञा है। अब यह संसार का सरदार शैतान का तख्ता कैसे पलटा? मेरे विचार में यह एक क्रमवार प्रक्रिया है। जब यीशु की क्रूस पर मृत्यु हुई तब शैतान समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ, जिसे उसने पराजय समझा वह अंततः विजयी रहा। क्रूस के कारण वह युद्ध हार गया। इसी कारण यीशु ने कहा कि इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। शैतान के स्वर्ग से निकाले जाने की प्रक्रिया दूसरी चरण होगी, जिसका उल्लेख प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय उसके 10 पद में है, और तीसरा चरण होगा शैतान का अतः कुंड में डाला जाना, जिसे हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 अध्याय उसके 3 पद में देखते हैं, और अंतिम चरण में वह आग की झील में डाला जाएगा। क्रूस मसीह की विजय और शैतान की पराजय का सूचक है। यीशु अपने मोक्षक मृत्यु पर बल देता है। उसकी मृत्यु सब मनुष्यों को उसकी ओर लाएगी। उसमें विश्वास करने वाले उद्धार पाएंगे और उसे अस्वीकार करने वाले चूक जाएंगे। कृपया ध्यान दें कि यीशु को ऊपर उठाना और उसकी मोक्षक मृत्यु पर बल देना कैसी महत्वपूर्ण बात है। मेरे मित्रों, सुसमाचार का प्रचार अति आवश्यक है। क्रूस पर उठाए गए यीशु का प्रचार अति आवश्यक है। हम यूहन्ना 12 उसके 34 पद में पढ़ते हैं, इस पर लोगों ने उससे कहा कि हमने व्यवस्था की यह बात सुनी है कि मसीह सर्वदा रहेगा, फिर तू क्यों कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जनसमूह उलझन में पड़ गया था, क्योंकि मसीह को तो राज करना था और यीशु कह रहा था कि मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। हम यूहन्ना 12 अध्याय उसके 35 और 36 पद में पढ़ते हैं, यह मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, तब तक चले चलो, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो कि तुम ज्योति के संतान हो। ये बातें कहकर यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यीशु अपने शिष्यों के साथ चला गया और उनसे छिपा रहा। उसकी सांसारिक सेवा समाप्त हो गई थी। अब वह अपना राज्य स्थापित करने आएगा। हम आगे देखते हैं यीशु की सांसारिक सेवा का अंत। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय 37 से 41 पद में, और उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास न किया, ताकि यशाया भविष्यवक्ता का वचन पूरा हो जो उसने कहा कि हे प्रभु, हमारे समाचार की किसने प्रतीति की है, और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। इस कारण वे विश्वास न कर सके, क्योंकि यशाया ने फिर भी कहा कि उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर किया है, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। यशाया ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में बातें की। अब ध्यान दीजिए, उनकी उलझन का कारण था कि वे जगत की ज्योति के साथ खड़े थे परंतु देख नहीं पा रहे थे। यहाँ यशाया 53 की भविष्यवाणी पूरी हुई। उनके लिए यीशु के जीवन का बलिदान दिया गया, परंतु उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। अगला संदर्भ हम पाते हैं यशाया 6 अध्याय उसके 10 का है कि उनका मन कठोर कर दिया गया था। मेरे मित्रों, सबसे बड़े संकट की बात है सुसमाचार सुनकर उसे अनसुना करना, उसे अपने जीवन में ग्रहण न करना। अंतिम निर्णय परमेश्वर के हाथ में ही होता है। हम यूहन्ना 12 अध्याय उसके 42 और 43 पद में पढ़ते हैं, तो भी सरदारों में से भी बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, ऐसा न हो कि आराधनालय में से निकाले जाएं, क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी। मेरे मित्र, यह उनका दुर्भाग्य है। आज भी अनेक ऐसे ही विश्वासी हैं। अंत में दो भीरू विश्वासी यीशु की लोथ को क्रूस पर से उतारेंगे। भीरू अर्थात ये जो गुप्त विश्वासी थे, वे उसे उतारेंगे। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 44 से 46 पद में पढ़ते हैं, यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न चले। यहां पर यीशु फिर कहता है कि वह जगत की ज्योति है। वह उन सब की आंखें खोल देगा जो उससे याचना करेंगे कि उन्हें ज्योति की आवश्यकता है। तब हम आगे देखते हैं यूहन्ना 12 उसके 47 से 50 पद में, यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, और इसलिए मैं जो बोलता हूँ वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। मेरे मित्रों, हमारे कर्म और हमारे धार्मिक विचार हमारे न्याय का कारण नहीं होंगे। हमारा न्याय परमेश्वर के वचन के आधार पर होगा। पहली बार जब यीशु आया था तब वह न्याय करने नहीं उद्धार करने आया था, परंतु जब वह फिर से आएगा तब वह न्याय करेगा। आकाशवाणी अब भी गूंज रही है जिसे हम मत्ती 17:5 में पाते हैं, यह मेरा प्रिय पुत्र है इसकी सुनो। मेरे मित्रों, यूहन्ना रचित सुसमाचार का एक भाग समाप्त होता है। जिन्होंने आकाशवाणी पर ध्यान देकर यीशु को स्वीकार किया उनके लिए उसने स्वर्ग लोक में स्थान बनाया, परंतु जिसने अपने राजा को स्वीकार नहीं किया उन्हें उसने भी अस्वीकार कर दिया कि वह राजा है। मेरे मित्रों, आज मेरे लिए और आपके लिए भी चुनौती है, क्या हम उससे एक राजा के रूप में स्वीकार करते हैं या नहीं, क्योंकि वह फिर से आने वाला है ताकि वह मेरा और आपका न्याय करे। इससे पहले कि हम गंभीर परिस्थिति में पड़ जाएं, आज ही हम उसे स्वीकार करें, क्योंकि सुसमाचार को इनकार करने के द्वारा से हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आने से रोकते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो निश्चय जाने कि हम अपने ही उद्धार के मार्ग को बंद करते हैं। क्या आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं? प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे और समझने की सहायता प्रदान करे कि आप प्रभु को ग्रहण कर सकें। प्रभु आप सबके साथ हो।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।